नमस्कार भारत, 25 दिसंबर दिन रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के विरोध में इसराइली प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधों की समीक्षा का आदेश दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन, क्या समानता क्या अंतर है वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में?
नरेंद्र मोदी को जो चाहने वाले लोग हैं वो एक विचारधारा के लोग हैं, जो उनकी विचारधारा से, जो उनकी राय सहमत है, जबकि वाजपेयी जी की लोकप्रियता इससे बिल्कुल उलट थी। उनकी विचारधारा से जो लोग सहमत नहीं थे उन लोगों के दिलों में भी वाजपेयी लोकप्रिय नेता थे।
क्रिकेट के मैदान में झंडे गाड़ने के लिए बेताब है एक सिख क्रिकेटर।
मुझे खुशी होगी कि मैं इंडिया के खिलाफ खेलूंगा पाकिस्तान की साइड से।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इसराइल के विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ हर तरह के अनुबंध पर दोबारा मूल्यांकन कर एक महीने के अंदर किया जाए। इसमें संयुक्त राष्ट्र संस्थानों को मिलने वाली वित्तीय मदद और उसके प्रतिनिधियों की इसराइल में मौजूदगी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बयान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फलस्तीन में कब्जे वाले इलाके में इसराइली बस्तियों को खत्म करने संबंधी प्रस्ताव के पारित होने के बाद आया है। नेतन्याहू ने वादा किया है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन इस फैसले को अमान्य कर दिया जाएगा। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के एक प्रवक्ता का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव इसराइली नीति के लिए एक बड़ा धक्का है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बांग्लादेशी महिला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय धमाके में खुद को उड़ा लिया। इसे बांग्लादेश में महिला आत्मघाती हमले की पहली घटना माना जा रहा है। ढाका में कल हुए शूटआउट में इस महिला के साथ एक आदमी की भी मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की इस छापेमारी में दो अन्य महिलाओं और दो बच्चों ने पुलिस के आगे आत्मसमर्पण भी किया था। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने बताया कि महिला का संबंध एक प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन जमीयतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ था। ढाका पुलिस की चरमपंथ रोधी शाखा के प्रमुख मोनिरुल इस्लाम ने बताया कि क्या हुआ था।
एक जन महिला और एक तार 7-8 बच्चों के बच्चा के लिए बेरिया आशे आत्मसमर्पण।
करीब 7 या 8 साल के एक बच्चे के साथ एक महिला घर से बाहर आई और ऐसा अभिनय किया जैसे वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए आ रही थी, लेकिन जब वो आई तो अचानक ही उसने अपने आत्मघाती जैकेट को खोला और धमाका कर दिया। बच्ची घायल हो गई और आत्मघाती जैकेट पहनी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी बाद में मौत हो गई। मोनिरुल इस्लाम के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में लाखों लोगों ने सड़कों पर लगातार 9वें हफ्ते में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भीड़ कैरल गा रही थी और क्रिसमस के मौके पर रैली के लिए कुछ लोगों ने सांता के कपड़े भी पहन रखे थे। संसद ने पहले ही राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए मतदान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने करीबी दोस्त को परोक्ष रूप से उन्हें प्रभावित करने की इजाज़त दी थी, लेकिन इस फैसले को दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत से पुष्टि की जानी है। एक प्रदर्शनकारी किम सिक ने कहा कि वे चाहते हैं कि मामले का निपटारा जल्दी हो। हमारी इच्छा है कि राष्ट्रपति का इस्तीफा तुरंत देखें, लेकिन यह अभी तक अधूरी है, इसलिए हम मोमबत्तियां जलाना जारी रखेंगे। आज क्रिसमस की भावना के तहत हमने सेंटा क्लॉज की तरह कपड़े पहने हैं। हम राष्ट्रपति कार्यालय तक मार्च करेंगे और राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे को तोहफे में बेड़ियां देंगे। सियोल में एक प्रदर्शनकारी के शब्द। एक निगरानी समूह का कहना है कि सीरिया में एलेपो के पश्चिम में स्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले एक शहर अत्रेब में हवाई हमले हुए हैं। सीरिया में मानवाधिकारों पर नजर रखने वाली संस्था का कहना है कि कल हुए हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। एलेपो के बाहर के कई इलाकों में भी आग की जद में आए हैं। विद्रोही एलेपो में हार गए हैं, लेकिन आसपास के ग्रामीण इलाकों और पड़ोस के इदलिब प्रांत में कई क्षेत्र अब भी उनके नियंत्रण में हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अपने विवादास्पद धर्मार्थ संस्थाओं को भंग करना चाहते हैं, ताकि वे अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हितों के किसी भी टकराव की उपस्थिति से भी बचना चाहते हैं। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल राजनीतिक समूहों के लिए दान और चंदे के कानूनों की पालना पर ट्रंप फाउंडेशन की जांच कर रहे हैं और अक्टूबर में इसे धन उगाहने से रोकने का आदेश दिया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जब अवैध इसराइली बस्तियों के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान किया था, तभी ये बात साफ हो गई थी कि इस मामले में इसराइल इतने जल्दी पीछे हटने वाला नहीं है। और अब इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वक्त लगेगा, लेकिन वो इस प्रस्ताव को अमान्य कराकर ही दम लेंगे। फिलहाल इसराइल जो काम करने जा रहा है वो है संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों की समीक्षा, जिसका इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आदेश भी जारी कर दिया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए अमर शर्मा से।
इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा है कि उनका देश सुरक्षा परिषद में पारित प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ हर तरह के अनुबंध का दोबारा मूल्यांकन किया जाए। इसमें संयुक्त राष्ट्र संस्थानों को मिलने वाली वित्तीय मदद और उसके प्रतिनिधियों की इसराइल में मौजूदगी भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के निर्णय को भेदभावपूर्ण और शर्मनाक बताते हुए इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इसमें समय लगेगा, लेकिन इस फैसले को अमान्य कर दिया जाएगा। नेतन्याहू ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों को दोहराया कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी निर्णय में बदलाव आएगा। नेतन्याहू ने कहा,
ההחלטה שהתקבלה באו"ם אתמול היא חלק משירת הברבור של העולם הישן המוטה נגד ישראל।
संयुक्त राष्ट्र में कल लिया गया फैसला इसराइल के खिलाफ दुनिया का पुराना पक्षपाती रवैया है। हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं और जैसा कि अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कल कहा है कि ऐसा लोगों की सोच से भी जल्दी होने वाला है। बिन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। फलस्तीनी जमीन पर इसराइल के कब्जे वाले इलाके में इसराइली बस्तियों को खत्म करने संबंधी प्रस्ताव को कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पास किया गया। अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया था और मतदान में भी हिस्सा नहीं लिया था। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसराइल के खिलाफ प्रस्तावों पर वीटो करता रहा है, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के एक प्रवक्ता का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव इसराइली नीति के लिए एक बड़ा धक्का है। फलस्तीनी शहर रमल्ला में कुछ लोगों ने उम्मीद जताई कि इस प्रस्ताव का असर पड़ेगा। सलेम सामियह कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को लागू करेंगे और इसे उन प्रस्तावों की तरह अलग नहीं रख दें जिन्हें कभी लागू नहीं किया गया। खलील जेमजावी का कहना है, कुछ भी नहीं बदलेगा, ये सिर्फ राजनीति और बातें हैं। उम्मीद है कि इस कदम से हमारे लोगों के लिए अच्छा होगा। हालांकि हमें इस वोट की उम्मीद नहीं थी और संभवतः यह केवल राजनीति, वार्ता और कागज पर लगी स्याही नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि इसे जमीन पर लागू किया जाए। ये थे फलस्तीनी शहर रमल्ला के कुछ निवासियों के शब्द। वहीं इसराइल की राजधानी यरूशलम में हर होमा बस्ती के निवासियों ने कहा कि इस प्रस्ताव से इसराइली बस्तियों का निर्माण बंद नहीं होगा।
इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधों की समीक्षा का आदेश दिया। रिपोर्ट सुना रहे थे अमर शर्मा। रुख कर रहे हैं भारत का, जहां 8 नवंबर के बाद हर दिन नोटबंदी और काला धन और भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। जैसे कि आज का जनसत्ता मेरे सामने है, 30 दिसंबर के बाद बर्बाद हो जाएंगे बेईमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और राहुल गांधी कहते हैं कि नोटबंदी है गरीब विरोधी और अमीरों की तिजोरी भरने वाली। सरकार हर दिन कह रही है नगद लेन देन कम से कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल भुगतान करो। चाय की दुकान पर डिजिटल भुगतान करते हुए सरकार के मंत्री फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन आम लोगों की अपनी समस्याएं हैं। जिसके पास मोबाइल तो है लेकिन इंटरनेट नहीं है, और इंटरनेट है भी तो ऑनलाइन भुगतान करने के दौरान जेब कटने की आशंका मन से निकल नहीं पा रही। जेब काटने के लिए इंटरनेट की दुनिया में न जाने कितने धोखेबाज घूम रहे हैं, जानकार ऐसा कहते हैं। सरकार पर विपक्ष के हमले जारी हैं, और इस सब के बीच भारत सरकार का नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग कहलाता था, आज से एक इनामी योजना शुरू कर रहा है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की पुरस्कार योजना आज से लागू हो रही है। आज से 14 अप्रैल तक हर दिन डिजिटल पेमेंट करने वाले 15,000 लोगों को लकी ड्रॉ के जरिए इनाम दिया जाएगा। इस योजना को नोटबंदी के बाद लोगों को हो रही दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि नोटबंदी को लेकर राजनीति का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई की एक रैली में कहा कि देश अब भ्रष्टाचार सहने को तैयार नहीं है। देश के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं।
अगर उनको मोदी का डर न लगता हो बेईमानों को तो न लगे, लेकिन बेईमान लोगों इन 125 करोड़ देशवासियों के मिजाज को कभी कम मत ना किए, उससे तो आपको डरना ही पड़ेगा। काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो सेनापति बनकर के निकले हुए हैं।
उधर विपक्ष भी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं गंवा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल हिमाचल के धर्मशाला में नोटबंदी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार गरीबों की अनदेखी कर रही है।
गरीब लोग लाइन में लगे थे, बीजेपी के लोगों ने, आपको याद होगा अखबार में पढ़ा होगा, लड्डू दिए। कितने का आता है लड्डू? 3 रुपए का, 5 रुपए का आता है। डिमोनेटाइजेशन के बाद विजय माल्या को 1200 करोड़ रुपए का लड्डू खिलाया है। आपको 3 रुपए का लड्डू और विजय माल्या को 1200 करोड़ का लड्डू, यह है सूट-बूट की सरकार।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कथित तौर पर नोटबंदी की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, अखिलेश यादव ने उन्हें मुआवजा दिया।
जो अपनी मेहनत का पैसा लेने गए, पैसे की वजह से उन्हें लाइन में लगना पड़ा, पैसा मिला नहीं, उनकी जान चली गई, उन परिवारों की भी मदद करने के लिए सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए देने का काम आज हुआ है।
सियासी खींचतान के बीच विपक्षी दल प्रधानमंत्री को 50 दिन की उस मियाद की याद भी दिला रहे हैं जिस दौरान उन्होंने लोगों से सब्र रखने की गुजारिश की थी। इस बीच सवाल ये भी है कि क्या आज से शुरू हो रही इनामी योजना से सरकार को कोई राहत मिलेगी।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। तो एक तरफ सरकार की इनामी योजना, दूसरी तरफ 30 दिसंबर आ रहा है, नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं 30 दिसंबर के बाद सब ठीक हो जाएगा। बहरहाल आज 25 दिसंबर और आज दो जानी मानी हस्तियों का जन्मदिन है। पहले हैं पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। मोदी सरकार उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं गाहे बगाहे उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से होती रही है। तो कितनी समानता और कितना अंतर है दोनों में, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी के सामने यही सवाल रखा हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने।
वाजपेयी जी का जो जीवन है प्रधानमंत्री के तौर पर, राजनेता के तौर पर और संसदीय उनका जो कार्यकाल है 40 साल का करीब करीब, उस सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो किसी एक दल के राजनेता के तौर पर नहीं देखे जा सकते। भले ही वो ता जिंदगी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के साथ जुड़े रहे, लेकिन मुझे जो आजाद हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास है उसमें दूसरा नेता बहुत दिमाग पर जोर डालने के बाद भी याद नहीं आता जिसका सम्मान सभी राजनीतिक दलों में समान रूप से हो। में कोई शक ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और यूं कहे कि हिंदुस्तान के इतिहास में राजीव गांधी के बाद वो सबसे लोकप्रिय संसदीय दल के नेता रहे हैं। मतलब 282 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास तो कभी नहीं रही। वाजपेयी जी अपनी जिंदगी में राजनीतिक जीवन में बहुमत जुटाने की कोशिश में ही लगे रहे। इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी वाजपेयी से ज्यादा लोकप्रिय भी लोग कह सकते हैं और वाजपेयी जी के मुकाबले में आज जो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है वो उसका उठाव उसका चढ़ाव जो है बहुत ज्यादा है। लेकिन वाजपेयी जी की लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी को जो चाहने वाले लोग हैं वो एक विचारधारा के लोग हैं, जो उनकी विचारधारा से जो उनकी राय से सहमत है, जबकि वाजपेयी जी की लोकप्रियता इससे बिल्कुल उलट थी। उनकी विचारधारा से जो लोग सहमत नहीं थे, जो उनकी बहुत सारी बातों को साथ नहीं चलना चाहते थे, जो उन्हें वोट नहीं देते थे, उन लोगों के दिलों में भी वाजपेयी लोकप्रिय नेता थे। इस दृष्टि से वो ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। वोटों की दृष्टि से नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेता हैं ज्यादा वाजपेयी की तुलना में। दूसरी बात यदि हम करें, नरेंद्र मोदी बहुत निर्णायक भूमिका में दिखाई देते हैं, वो फैसले खुद करते हैं, लेकिन वाजपेयी जी हमेशा सबके साथ मिलकर फैसले करते थे। जो बीजेपी की एक नीति कही जाती है कि वो एक कलेक्टिव लीडरशिप में भरोसा करती है, वो कलेक्टिव लीडरशिप का सबसे बेहतर उदाहरण वाजपेयी जी थे। वो इतने लोकप्रिय थे कि मैंने उनको यात्राओं में देखा है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से व्यवहार करते थे, वो आज मैं देखता हूँ कि छोटी पार्टी के छोटे से छोटा जो नेता होता है, जिसे आप जिला स्तर का ब्लॉक स्तर का नेता कहते हैं, उसमें भी वो आत्मीयता या वो जो एक मिलनसार का गुण है वो नहीं दिखाई देता। जबकि वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पर भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ भी इतने आत्मीयता से मिलते थे।
मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी।
साल 2016 खत्म होने को है और अब नए साल का इंतजार है। साल के आखिर में बीबीसी आपके लिए लेकर आई है कुछ ऐसी शख्सियतों से मुलाकात जिन्होंने गुजरे जमाने में एक अलग मुकाम हासिल किया था।
सवाल एक है कि इतने अवार्ड मिलने से क्या मैं कोई बेटर म्यूजिशियन हो गया?
खानदान हम लोग का रोहिला, वो जो है ना, वो रोहिला किस कदर जालिम जफाजू कीना परवर था, यानी वो लोग हैं हम।
हमारा इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास रहा है, उसमें जो 80% छूट गया है जो हाशिए के लोग हैं, अगर मैं उनकी बात कहता हूँ तो उसको लेकर विवाद होता है।
मेरे ख्याल से 2 साल की उम्र होगी, वालदेन ने हमारे वो सहारा देने के लिए बल्ला ही दिया होगा, कोई और चीज नहीं दी होगी।
हमारी वर्षांत पेशकश में आपसे रूबरू होंगे पंडित रविशंकर, जोहरा सहगल, राजेंद्र यादव और नवाब पटौदी जैसी कुछ और शख्सियतें 25 दिसंबर से दिन भर और नमस्कार भारत में।
आज है 25 दिसंबर दिन रविवार, आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। रोजमर्रा की आपाधापी में कहीं आपको लगता होगा कि हम bbchindi.com पर ये खबर ठीक से नहीं पढ़ पाए, वो विश्लेषण ठीक से नहीं पढ़ पाए, तो रविवार यानी आज के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे हफ्ते की चुनिंदा 10 खबरें और बेहतरीन विश्लेषण सब एक जगह, जिसे आप bbchindi.com पर पढ़ सकते हैं अब से कुछ ही देर के बाद। वो 10 बातें जो इस हफ्ते आपसे मिस हुई। कार्यक्रम में आगे बीबीसी न्यूज़ मेकर्स, जिसमें सुनेंगे आप महेंद्र पाल सिंह को, जो पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में अपना मुकाम बनाने के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन फिलहाल हर रविवार की तरह पहले सुनते हैं भारत और पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा, जिसे तैयार किया है बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने।
भारत और पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की बात की जाए तो पाकिस्तानी अखबारों में इस हफ्ते पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान वापसी, जर्मनी में चरमपंथी हमला, नए सेना प्रमुख का सऊदी अरब दौरा वगैरह सुर्खियों में रहे। भारतीय उर्दू अखबारों में इस हफ्ते भी नोटबंदी को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप ही खबरों में छाए रहे। पहले बात पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पिछले 1.5 सालों से पाकिस्तान से दूर रह रहे थे, लेकिन शुक्रवार 23 दिसंबर को वो पाकिस्तान लौटे। ये खबर सारे अखबारों में पहली सुर्खी बनी। अखबार जंग के अनुसार कराची हवाई अड्डे के बाहर जरदारी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले चुनाव में उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। उनका कहना था, मैं लौट आया हूं और आवाम के लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आया हूं। जंग के अनुसार जरदारी ने इस मौके पर भारत प्रशासित कश्मीर का भी जिक्र किया। जरदारी का कहना था कि बहादुर कश्मीरी नौजवान जिस भारतीय फौज और हिंदू साम्राज्य के सामने जिस हिम्मत से लड़ रहे हैं, उनके हौसलों को पस्त नहीं किया जा सकता। रोजनामा खबरें ने आसिफ अली जरदारी के भाषण को पहली खबर बनाते हुए सुर्खी लगाई है, लोकतंत्र का कोई भी विकल्प बहुत खतरनाक है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर उभरे मतभेद का भी कई अखबारों में जिक्र है। अखबार नवाए वक्त ने सुर्खी लगाई है, पाकिस्तानी आपत्ति के बावजूद मोदी सरकार सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए सक्रिय। रोजनामा दुनिया लिखता है कि सिंधु जल समझौता पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों का एक टास्क फोर्स बना दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बोस्निया दौरा भी सुर्खियों में रहा। बोस्निया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट का कोई वजूद नहीं है। अखबार जंग लिखता है कि नवाज शरीफ ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान में अलकायदा और तालिबान का खात्मा हो चुका है और भारत के साथ किसी भी मतभेद को वो शांतिपूर्वक हल करना चाहते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ईसाइयों के त्यौहार क्रिसमस से ठीक पहले एक बाजार में एक नामालूम व्यक्ति ने ट्रक से 12 आदमी को कुचल दिया था। जर्मन पुलिस ने इस मामले में एक पाकिस्तानी व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। अखबार जंग ने लिखा है कि 30 साल के नवेद बलोच को जर्मन पुलिस ने शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उसे आभास हो गया कि उन्होंने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। जंग के अनुसार पुलिस ने माफी मांगते हुए उस व्यक्ति को रिहा कर दिया। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब दौरा भी सुर्खियों में रहा। जनरल बाजवा ने सऊदी अरब के राजा शाह सलमान, वहां के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से मुलाकात की। रोजनामा दुनिया के अनुसार दोनों देशों ने इस बात को दोहराया कि चरमपंथ को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। यमन कार्गो जहाज पर नामालूम लोगों के हमले में 7 पाकिस्तानी नागरिकों के मारे जाने की खबर भी सारे अखबारों में छाई रही। भारत से छपने वाले उर्दू अखबारों की बात की जाए तो यहाँ तो ज्यादातर खबरें नोटबंदी से जुड़ी रही। रोजनामा इनकलाब ने नोटबंदी के मुद्दे पर फोर्ब्स मैगजीन में छपे एक संपादकीय को पहली खबर बनाई है। अखबार ने सुर्खी लगाई है, नोटबंदी का फैसला अनैतिक और जनता के पैसे की लूट है। मैगजीन के संपादक स्टीव फोर्ब्स ने संपादकीय में लिखा है कि नोटबंदी का फैसला बड़े पैमाने पर जनता की संपत्ति की लूट है। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई किसी सरकार का ये फैसला हैरान करने वाला है। स्टीव लिखते हैं कि अपनी ही जनता को तकलीफ पहुंचाने, गरीबों को और बदहाल करने के बजाय सरकार सिस्टम को बेहतर करने, रुपए को मजबूत करने और बड़ी योजनाओं पर काम करती तो ज्यादा बेहतर होता। जदीद खबर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, चाय वाला मोदी अब पेटीएम वाला हो गया। अखबार के अनुसार ममता ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है, जिसे जनता की परेशानियों की कोई फिक्र नहीं है। ममता ने कहा कि चंद निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही मोदी ने नोटबंदी का फैसला किया है। वहीं सहाफत अखबार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नोटबंदी गरीबों पर बमबारी करने जैसा है।
भारत और पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा अभी आप सुन रहे थे अमर शर्मा की जुबानी। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। पिछले दिनों इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 4-0 से अपने नाम करने के बाद भारत के खिलाड़ी इन दिनों आराम फरमा रहे हैं। दोनों टीमें अब नए साल में 15 जनवरी से 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज में आमने सामने होंगी। इसके बाद दोनों टीमें 3 2020 मैचों की सीरीज भी खेलेगी। अब ऐसा नहीं है कि सभी खिलाड़ी आराम कर रहे हैं, कुछ खिलाड़ी तो रणजी ट्रॉफी में भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। अब ये बात अलग है कि वहां उनका बल्ला इतना नहीं गरजा। इंग्लैंड के खिलाफ 13 शतक जमाकर रातों रात सुर्खियां बटोरने वाले करुण नायर और स्टार सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के टीम में रहने के बावजूद उनकी टीम कर्नाटक रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में कल दूसरे ही दिन तमिलनाडु के खिलाफ 7 विकेट से हार गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन कर्नाटक की टीम केवल 88 रन पर ढेर हुई। केएल राहुल 4 और करुण नायर केवल 14 रन बना सके। इसके बाद तमिलनाडु ने 152 रन बनाए। दूसरी पारी में केएल राहुल ने 77 रन बनाए लेकिन करुण नायर 12 रन बना सके और कर्नाटक केवल 152 रन बना सकी। बाद में जीत के लिए दूसरी पारी में तमिलनाडु ने 87 रनों का लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दिनेश कार्तिक 41 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं फिटनेस की समस्या अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी युआन मार्टिन डेल पोत्रो पर भारी पड़ी और वो अगले महीने होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए हैं। उल्लेखनीय कि डेल पोत्रो ने अर्जेंटीना को पहली बार डेविस कप जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दुनिया के 6 नंबर के खिलाड़ी क्रोएशिया के मारिन चिलिच को निर्णायक 5वें सेट में मात दी थी। इसी बीच जाते जाते इस साल भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम एशिया कप विजेता बन गई। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 34 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 273 रन बनाए। भारत के हिमांशु राणा ने 71 और शुभमन गिल ने 70 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 48.4 ओवर में 239 रन बना सकी। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज रेविन कैली ने 62 और कप्तान कामिंदु मेंडिस ने 53 रन बनाए। भारत के अभिषेक शर्मा ने 37 रन देकर 4 और राहुल चहर ने 22 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वैसे इस टूर्नामेंट में विजेता भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सिंगापुर ने हिस्सा लिया।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और खेल समाचारों के बाद बीबीसी न्यूज मेकर्स की बारी है। मिलिए महेंद्र पाल सिंह से जो पाकिस्तान क्रिकेट में झंडे गाड़ने के लिए बल्ला लेकर निकल पड़े हैं।
पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में पहली बार कोई सिख क्रिकेटर अपना मुकाम बना रहा है और इस क्रिकेटर का नाम है महेंद्र पाल सिंह। तो महेंद्र पाल सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी न्यूज मेकर्स में।
जी चर्जी कला, बिल्कुल ठीक ठाक।
तेरे कोल गड्डी आ चैलेंजर नी हो, तेरे कोल गड्डी आ चैलेंजर नी हो, इस डंडी वाला ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सिख खिलाड़ी पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी तक पहुंचने में कामयाब रहा है और महेंद्र सिंह इसका पूरा श्रेय देते हैं।
माता पिता ने भी काफी अप्रिशिएट किया मुझे और काफी सपोर्ट दिया है, दोस्तों ने, बाकी कोलीग्स ने और जितने मेरे में कोचेस थे सबने मुझे अप्रिशिएट किया कि आप क्रिकेट खेल सकते हो और मैंने यहाँ पे मेहनत करके मैं यहाँ पे स्टेज पे पहुँचा।
तो महेंद्र, इस खेल का शौक आपको कब से लगा?
बचपन से क्रिकेट खेलने का शौकीन था।
आप क्रिकेटर तो बन गए, अब कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते हैं?
जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो पाकिस्तान की तरफ से आऊंगा, तब बहुत खुशी होगी, मुझे खुशी होगी कि मैं इंडिया के खिलाफ खेलूंगा पाकिस्तान की छाया से।
महेंद्र क्रिकेट के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की पढ़ाई भी कर रहे हैं। महेंद्र पाल सिंह का कहना है,
जी जाहिर बात है जिंदगी गुजारने के लिए स्टडी बहुत जरूरी है, क्रिकेट जरूर हमें टीम वर्क सिखाती है लेकिन बाकी तहजीब और जितने भी अखलाकी है वो एजुकेशन से मिलती है, अवेयरनेस एजुकेशन से मिलती है।
लेकिन इन सब के साथ साथ महेंद्र को ये भी पता है कि जो उन्होंने हासिल किया है वो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है।
बहुत खुश हूँ और मुझे फखर है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और इस स्टेज तक पहुँचा हूँ मेरे माँ बाप की दुआओं के साथ और जितने भी मेरे टीचर्स हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सबकी दुआओं के साथ मैं भी पहुँचा हूँ।
महेंद्र सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जाहिर है पंजाबी गाने का तो शौक उनको होगा ही।
सुनावा
कुछ भी सुना दो जी, जो सुनाओगे वो ऐसे पसंद कर लेंगे।
की हो गया दिल रो पाया मेरी जिंदगी की करा,
की हो गया दिल रो पाया मेरी जिंदगी की करा, मैं मुक गया मैं टूट गया गल खिंड गई की करा, की ये मेरा हाल होया की ये मेरे नाल होया ये जग जानदा नहीं।
बीबीसी न्यूज मेकर्स।
बीबीसी न्यूज मेकर्स में अभी आप सुन रहे थे महेंद्र पाल सिंह, जो पाकिस्तान के सिख खिलाड़ी हैं और क्रिकेट के मैदान में झंडे गाड़ने के लिए बल्ला लेकर निकल चुके हैं। आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत। आप जानते हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों को न केवल रेडियो पर बल्कि bbchindi.com पर भी सुनते हैं और अगले प्रसारण तक यानी अगले कल तक, कल सुबह का जब अगला नमस्कार भारत प्रसारित होगा सुबह 6:30 बजे, तब तक आप इस कार्यक्रम को दोबारा bbchindi.com की वेबसाइट पर आकर सुन सकते हैं और बहुत आसानी से अपने मोबाइल पर bbchindi.com की वेबसाइट खोल सकते हैं। और चिंता मत करिए, अपने मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो डिस्चार्ज होने से कैसे बचाना है अपने मोबाइल की बैटरी, वो 5 उपाय भी आप बीबीसी हिंदी वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त हो चला है मुख्य समाचारों का, एक बार फिर अमर शर्मा से।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फलिस्तीन में कब्जे वाले इलाके में इसराइली बस्तियों को खत्म करने संबंधी प्रस्ताव के पारित होने के बाद इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में इसराइल के विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ हर तरह के अनुबंध का दोबारा मूल्यांकन 1 महीने के अंदर किया जाए। इसमें संयुक्त राष्ट्र संस्थानों को मिलने वाली वित्तीय मदद और उसके प्रतिनिधियों की इसराइल में मौजूदगी भी शामिल है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बांग्लादेशी महिला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय धमाके में खुद को उड़ा लिया। इसे बांग्लादेश में महिला आत्मघाती हमले की पहली घटना माना जा रहा है। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने बताया कि महिला का संबंध एक प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन जमीयतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ था। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में लाखों लोगों ने सड़कों पर लगातार 9वें हफ्ते प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एक निगरानी समूह का कहना है कि सीरिया में एलेपो के पश्चिम में स्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले एक शहर अत्रेब में हवाई हमले हुए हैं। सीरिया में मानवाधिकारों पर नजर रखने वाली संस्था का कहना है कि कल हुए हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। एलेपो के बाहर के कई इलाकों में भी आग की जद में आए हैं। विद्रोही एलेपो में हार गए हैं लेकिन आसपास के ग्रामीण इलाकों और पड़ोस के इदलिब प्रांत में कई क्षेत्र अब भी उनके नियंत्रण में हैं। अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अपने विवादास्पद धर्मार्थ संस्थाओं को भंग करना चाहते हैं ताकि वे अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हितों के किसी भी टकराव की उपस्थिति से भी बचना चाहते हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com है आपके साथ। अब समस्त सहयोगियों के साथ संदीप सोनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।